आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th के साइंस का 8th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे जो अलग अलग मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट, सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल को, एक डॉटर को बना सकता है। जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं कि एक मेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और एक फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के मिलने से जाकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो अलग अलग मोड्स होते हैं। पहला मोड हमने देखा था फिशन। फिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, फिशन मेनली देखा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और उनमें से भी ज्यादातर ये अमीबा में और आप कह सकते हैं प्रोटोजोन्स में। आपको ये जो एग्जांपल्स हैं वो आप क्या क्या लिख सकते हैं, अमीबा लिख सकते हैं, प्रोटोजोन्स लिख सकते हैं और कुछ बैक्टीरियाज लिख सकते हैं। इनमें जो सेल होता है वो दो में डिवाइड कर जाता है और उससे क्या होता है कि एक पेरेंट रह जाता है और एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जब डिवीजन होना है उसके पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है, यानी कि एक नया सेट ऑफ डीएनए बना दिया जाता है, साथ में सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो भी बना दिए जाते हैं और फाइनली सेल जो है वो दो में डिवाइड कर जाता है। तो इस तरीके से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फिशन हो रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। अमीबा का कोई बॉडी का शेप पर्टिकुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है जिसकी वजह से वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर जाता है इंटू टू इक्वल हाफ्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लेशमानिया में एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू ही लेशमानिया दो सेल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर तो फिशन एक जो हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा है कि एक सेल दो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये बाइनरी फिशन है। कई बार फिशन जो है वो मल्टीपल डॉटर्स को भी प्रोड्यूस करता है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ में डिवीजन होते 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 बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं एक ही पेरेंट से। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। और मल्टीपल फिशन का एग्जांपल आप लोगों को क्या लिखना है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद हमने देखा था अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पायरोगायरिया जो है वो एक सेल के नहीं बने, मल्टीपल सेल से बने हैं, लेकिन उनके अंदर सेल्स का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, टिश्यूज का फॉर्मेशन उनमें नहीं हुआ है। तो स्पायरोगायरा क्या करता है कि उसकी बॉडी जो है वो मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है। अब वो जो पीसेस टूटे हैं वो क्या करते हैं कि नए इंडिविजुअल में वो ग्रो कर जाते हैं। तो जितने पीसेस होंगे उतने नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा जब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हमें दिखने को मिलेगा स्पायरोगायरा में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने ये बात की थी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लेनेरिया, इनमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो मल्टीपल पीसेस में मान लो अगर टूट गई तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स जो टूट करके अलग हो गए हैं उनको वो रीग्रो कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात देखी थी कि रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है कि रीजनरेशन का पर्पस नहीं है रिप्रोड्यूस कराना, उनका केवल पर्पस ये है कि जो बॉडी का पार्ट लॉस हो गया है उसे रीग्रो करा लेना है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि रीजनरेशन जो प्रोसेस है ये एक मेन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये तो बस प्रोसेस है टू रीग्रो द पार्ट जो लॉस्ट हो गया है ब्रेक होने की वजह से। जैसे कि हम लोगों ने लिजर्ड्स का एग्जांपल लिया था कि लिजर्ड्स अपनी पूंछ को रीग्रो कर लेती हैं क्योंकि जब भी वो लॉस हो जाती है तो उसको वो रीग्रो करने की कैपेसिटी रखती है, उसे रीजनरेशन कहेंगे। तो लिजर्ड की पूंछ रीग्रो कर गई, रीजनरेशन हुआ है वहां पर, रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ है क्योंकि नई लिजर्ड तो नहीं बनी है, सिर्फ नया पूंछ बना है। तो इस तरीके से रीजनरेशन जो है उसका पर्पस रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन रीजनरेशन होने से जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हाइड्रा या प्लेनेरिया इनमें हम लोगों को रीजनरेशन की वजह से रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा था बडिंग। बडिंग जो होती है वो हाइड्रा में होती है, इसका एग्जाम्पल आप हाइड्रा लिख सकते हैं। हाइड्रा में क्या होता है कि जो हाइड्रा की मेन पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी से एक छोटा बड जो होता है वो निकलता है, यानी कि आउटग्रोथ, एक ऐसी कुछ भी बाहर बॉडी से बाहर कुछ ग्रो करने लगता है, बॉडी से अटैच्ड रहता है लेकिन उससे ग्रो करने लगता है, बॉडी से निकला हुआ ग्रो करने लगता है। उसके बाद ये जो ग्रोथ हो रही है, आउटग्रोथ हो रही है, ये बड़ी होने लगती है, बड के रूप में ये बन जाती है। उसके बाद ये और थोड़ी बड़ी होती है और ग्रो करती है और ये ऐसा देखने में लगता है जैसे जो पेरेंट है उसका मिनिएचर है, उसका छोटा रूप है। उसके बाद ये जब इतना ग्रो कर जाए कि ये अपने आप जी सके, तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और खुद ग्रो करके मच्योर हो जाती है। तो इस तरीके से हाइड्रा में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आज हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये भी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये केवल प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात यहाँ पर हो रही है, ये आप लोगों को केवल प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई सा भी आप लोगों को मेथड किसी एनिमल में नहीं मिलेगा देखने को। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो प्लांट्स हैं, काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स या फिर उनके स्टेम्स या फिर उनके लीव्स जो हैं वो एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स में हमें सीड्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें बीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा नया प्लांट ग्रो कराने के लिए, क्योंकि वो प्लांट जो है वो हम या तो उसके स्टेम से या रूट से या फिर लीव से ग्रो करा सकते हैं। तो इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जब हम किसी प्लांट से उसके लीव्स या फिर उसके स्टेम्स या रूट से एक नया प्लांट ग्रो करा पाए अंडर सूटेबल कंडीशंस, तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप बोलोगे कि इससे फायदा क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करके ही लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की जाती है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लो। लेयरिंग में क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स, मान लो जिनके स्टेम्स ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं इनटू न्यू प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स के स्टेम में पहले उसकी रूट्स की ग्रोथ कराई जाती है। जब वो अपने पेरेंट प्लांट पर होता है तभी उसके स्टेम में रूट्स ग्रो करवा दिए जाते हैं। जब रूट्स ग्रो हो जाते हैं तो उस स्टेम को काट करके जमीन में डाल देने से, यानी सॉइल में उसे सो कर देने से, बो देने से, वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसे लेयरिंग कहते हैं, जो कि शुगर केन जैसे प्लांट्स में देखा जाता है, किया जाता है। अब रही ग्राफ्टिंग की बात, तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि एक प्लांट जिसकी कुछ खास बातें हमें अच्छी लगती हैं उसको हमें लेकर के दूसरे प्लांट के साथ मिक्स करना है जिसकी कुछ खास बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो दो प्लांट्स आप एक ही स्पीशीज की ढूंढेंगे जिनकी अलग अलग खासियत है, और फिर आप क्या करोगे कि आप एक ऐसा प्लांट बनाओगे जिसके अंदर दोनों ही प्लांट्स की खास बातें मिक्स होकर के आपको न्यू प्लांट में मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ऐसा प्लांट ढूंढना पड़ता है जिसकी कुछ खास बातें आपको अच्छी लगती हैं, दूसरा एक और खास बात वाला प्लांट आपको ढूंढना पड़ता है। और ये रोजेज में किया जाता है, रोजेज में ये देखा जाता है कि रोज का एक स्टेम जिसका आपको लेना है, कोई सा भी आप स्टेम ले सकते हैं, कोई सा रोज जो आपको प्लांट पसंद हो उसका आप स्टेम ले लेंगे, स्टेम का हिस्सा काट करके दूसरे रोज के रूट वाले स्टेम में, यानी कि दो स्टेम्स ही होंगे, दोनों स्टेम्स को आपको जोड़ना है। बेसिकली आपको जोड़ना होता है, ग्राफ्टिंग में दो स्टेम्स जोड़ने होते हैं, लेकिन एक स्टेम ऐसा होगा जिसको रूट्स नहीं होंगे, उसके पास रूट्स नहीं होंगे, और दूसरा वाला स्टेम ऐसा होगा जिसके रूट्स होंगे और वो ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों के स्टेम्स को अलग अलग प्लांट्स के पहले वाले स्टेम उसको कट करके फिर दूसरे वाले स्टेम को भी कट करके दोनों को जोड़ देंगे। इस मेथड को ग्राफ्टिंग कहते हैं और ये यूज किया जाता है जो रोज के पौधे होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेनली शुगर केन में, रोजेज में, ग्रेप्स में, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप किसी किसान के यहाँ पर जाकर के पता भी लगा सकते हैं, जो प्राइमरी होती है जहाँ पर प्लांट्स रखे जाते हैं वहां पर आप लोग ज्यादा, अगर जानकारी आपको और अच्छे से चाहिए होगी, आप देखना चाहते होंगे कि कैसे किया जाता है, तो आप जाकर के देख भी सकते हैं। अब एक और खास बात होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, उसकी ये बात होती है कि सीड्स को पहले, देखो प्लांट जो है उसको सीड फॉर्मेशन करने में काफी समय लग जाता है। सीड फॉर्मेशन होने के बाद उसको जमीन में गाड़ेंगे, उसे बोएंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, फिर काफी समय बाद वो बड़ा होगा और फिर जाकर के वो सीड जो है वो प्लांट का, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो सीड का इस्तेमाल करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करवाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के इस्तेमाल से जो हम लोग न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं वो बहुत क्विकली हो जाता है। और भी बहुत से फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बनाना, बनाना जो होता है वो सीडलेस होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बनाना में सीड्स नहीं होते। तो इसको हम कैसे, अगर जो बनाना का फ्रूट आपने खाया होगा तो उसमें बीज नहीं होते, तो अगर आपको एक नया बनाना का प्लांट लगवाना है तो आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के इस्तेमाल से सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं उनसे भी हम लोग उनके भी प्लांट्स को बना सकते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं पुराने वाले प्लांट का इस्तेमाल करके। तो ऐसे प्लांट्स जो सीड नहीं बना सकते, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इनसे भी हम नया प्लांट बनवा सकते हैं यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद देखो, आपके मन में ये सवाल होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या जो हम न्यू बनाना का प्लांट बना रहे हैं उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे जो पहले वाले में थे? तो बिल्कुल ये बात तो श्योर होती है कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नया प्लांट बनाया जा रहा है वो क्योंकि उसी पेरेंट बॉडी के बॉडी का एक हिस्सा है, स्टेम हो चाहे रूट्स हो चाहे लीव्स हो, उसी की पेरेंट प्लांट की जो बॉडी है उसकी बॉडी का हिस्सा से नया प्लांट बनाया जा रहा है। इसलिए जो नया प्लांट बनता है उसके अंदर जो भी सारी उसकी खास बातें या फिर जो बुराई है, मतलब सारी की सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो अपने पेरेंट प्लांट बॉडी की तरह ही होती हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बिल्कुल जेनेटिकली एकदम सेम होता है, अपने पेरेंट के जैसा ही दिखने में नया प्लांट होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको एक्टिविटी करने को कहा गया है, एक्टिविटी 8.5 ऑन पेज नंबर 132। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पोटैटो ले लेना है, आलू ले लेना है। आलू के अंदर आपने दिखा होगा काफी सारे छोटे छोटे से गड्ढे गड्ढे दिखते हैं आप लोगों को, काफी जगहों पर गड्ढे गड्ढे हल्के हल्के से गड्ढे आपको दिखते हैं, उन्हें नॉचेस कहते हैं। अब ये जो नॉचेस होते हैं, अगर आप अपने इस आलू को रख दोगे ना कुछ समय के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मतलब कि मॉइस्चर ज्यादा हो और गर्मी बहुत ज्यादा ना हो, मतलब ठंडी जगह पर अगर आप इसे आलू को रख दोगे, तो आप देखोगे कि जहां जहां गड्ढे गड्ढे थे ना उसमें आपके आलू में, उन उन जगहों पर छोटे छोटे पौधे उगते हुए आप लोगों को नजर आने लग जाएंगे। तो इसी बात को ऑब्जर्व करके ये एक्टिविटी करने को आपको कहा गया है कि यहाँ पर आप लोगों को जो आलू लेना है उसमें से आपको पीसेस कट करने हैं, आलू के काफी सारे पीसेस कट करने हैं। कुछ पीसेस तो ऐसे रखना है जहां पर वो गड्ढे भी आए, आपके पीस के अंदर जो आलू का पीस आपने कट किया है उसके अंदर वो गड्ढा भी आना चाहिए, और कुछ पीसेस ऐसे कट करो जिसमें गड्ढा ना आए। गड्ढे को बिना इंक्लूड किए कुछ पीसेस कट करो और कुछ ऐसे पीसेस कट करो जिसमें गड्ढा इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद क्या करो कि आप सभी के सभी पीसेस को एक कपड़ा लो, कॉटन का कपड़ा लो, उसके 2-3 फोल्ड कर दो, उस पे पानी छिड़क दो, काफी सारा गीला कर दो उस कॉटन के कपड़े को, और उसके ऊपर इन सभी पीसेस को, आलू के जो सारे पीसेस हैं इनको रख दो। अब इसको ऐसे ही रखे रहो कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक रखे रहो, और ऐसी जगह पर रख दो जहां पर ठंडक ज्यादा हो। और ये ध्यान रखना कि आप जो कॉटन का कपड़ा आपने बिछाया हुआ है जिसके ऊपर आपने आलू के पीसेस रखे हैं उसे टाइम टाइम पर गीला करते रहना है, उसे सूखने नहीं देना है। उसके बाद जब आप कुछ दिनों बाद नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो पीसेस जिनमें आपने गड्ढे इंक्लूड किए थे उसमें आप लोगों को छोटे छोटे पौधे उगते हुए दिखने लग गए थे, लेकिन वो पीसेस जिसमें आपने गड्ढे इंक्लूड नहीं किए थे उसमें कोई पौधा नहीं उगा था। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आप आलू का पौधा उगा सकते हो एक आलू का इस्तेमाल करके, बगैर बीज का इस्तेमाल किए आप आलू का नया पौधा आलू का यूज करके ही उगा सकते हो। अब आलू जो है वो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिनमें से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो आलू है ये क्या है, ये बेसिकली स्टेम होता है, प्लांट का स्टेम होता है। जो आप लोगों को आलू खाने को मिलता है ये उसका फ्रूट नहीं होता है, ये उसका स्टेम होता है। इसके बारे में आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये स्टेम होता है, अभी बस इतना इन्फॉर्मेशन रख लो कि ये स्टेम होता है। अब स्टेम ये है और इसमें जो ये डिप्रेशंस हैं, छोटे छोटे गड्ढे जो हैं, इन्हें नॉचेस कहते हैं, और इन नॉचेस को आईज या फिर बड भी कहते हैं। तो पोटैटो में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं इन्हें आई भी कहते हैं, पोटैटो की आई है ये। तो जैसे आंख, आंख के स्ट्रक्चर का होता है, देखने में आंख जैसा लगता है, इसलिए इसे आई कहते हैं। तो अब ये जो आई है अगर आप इसे जमीन में बो देंगे तो ये एक नया प्लांट बना सकता है पोटैटो का, और ये भी एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाने का इन पोटैटो। सिमिलरली आपने ब्रायोफिलम का पौधा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसका डायग्राम आप लोगों को दिया भी गया है पेज नंबर 132 पर फिगर 8.5। ये ब्रायोफिलम का पत्ता है। ब्रायोफिलम के पत्ते में एक खास बात ये होती है कि इसके जो किनारी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी किनारी होती है, और जहां जहां से ये बेंड कर रहा है उन्हें नॉचेस कहते हैं। पत्ती जो आपकी ब्रायोफिलम की है वो जहां जहां से उसकी किनारी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, जहां जहां से वो मुड़ रही है उसे नॉचेस कहते हैं, और जिधर जिधर से भी ये मुड़ रही है वहां वहां पर इस पत्ते में एक खास बात यह है कि इसकी कैपेसिटी वहां पर है एक नया छोटा पौधा ग्रो कराने की। तो अगर आप ब्रायोफिलम के पौधे को देखेंगे तो उसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ समय बाद उसके पत्ती के किनारे किनारे पे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं जिसमें ऊपर पत्तियां होती हैं और नीचे की तरफ जड़ होता है, और ये जो छोटे पौधे निकल आए हैं पत्ती के ऊपर ये पत्ती से टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं और वापस से एक नया ब्रायोफिल्म का पौधा बना देते हैं। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है जो कि हमें ब्रायोफिलम के पौधे में उसके पत्तियों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी करने को आपको कहा गया, एक्टिविटी 8.6, ये पेज नंबर 132 पर ही है। इसमें आपको क्या करना है, आपके घरों में मनी प्लांट जो होता है उसका यूज आपको करना है। मनी प्लांट का एक पत्ता तोड़ लीजिए और साथ में एक और पार्ट तोड़िए मनी प्लांट का जिसके अंदर दो पत्तों का हिस्सा आता हो, मतलब स्टेम का पार्ट आता हो। तो इस बार आपको सिंगल पत्ता नहीं तोड़ना है, आपको थोड़ा लंबा डंडी तोड़नी है, जो मनी प्लांट है उसकी डंडी तोड़नी है, उसमें 2-3 पत्ते होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले एक तो सिंगल पत्ता तोड़ना है, सिर्फ पत्ता, उसमें डंडी नहीं होगी, केवल पत्ता होगा। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको मोटी वाली जो डंडी जिसमें पत्तियां लगी हैं वो डंडी तोड़नी है आपको, थोड़ी लंबी डंडी तोड़नी है। अब क्या करो, ये दोनों कटिंग्स जो आपने की हुई है, एक तो सिंगल पत्ता लिया हुआ है जो आपने, और दूसरा आपने क्या लिया हुआ है, आपने थोड़ा लंबा हिस्सा लिया हुआ है मनी प्लांट का, दोनों को ही आपको पानी में डुबो देना है। एक बोतल ले लेना और दोनों को अलग अलग बोतलों में डुबो देना। उसके बाद कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद जब आप नोटिस करोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो लंबा वाला हिस्सा लिया था आपने मनी प्लांट का, उसमें तो आपको छोटे छोटे रूट्स ग्रो करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन अगर सिंगल पत्ते को आप ग्रो कराने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो एक नया मनी प्लांट नहीं बना के देगा। तो यहाँ पर भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड देख पा रहे हैं जो कि मनी प्लांट्स में हो रहा है। और मनी प्लांट्स में क्या होता है कि मनी प्लांट का पौधा आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मनी प्लांट की स्टेम में, जो लंबी सी स्टेम होती है, बहुत लंबी सी स्टेम जो होती है, उसमें जगह जगह पर पत्तियां उगी होती हैं। और जिन जिन जगहों पर पत्तियां उगी होती हैं वो पार्ट्स जो हैं वो रूट्स ग्रो करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, अगर वो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाए या फिर पानी में डुबो दोगे तो वहां पर क्या होगा कि वो रूट्स भी ग्रो करने लग जाएंगी उसकी, और वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अगर सिंगल पत्ती को आप जमीन में डाल के उसे उगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं ग्रो करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको मनी प्लांट उगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो पार्ट इंक्लूड करना है जिधर से स्टेम से जुड़ी हुई है पत्ती। तो वो पार्ट अगर इंक्लूड करके आप जमीन में उसे बोएंगे तो क्या होगा कि वो एक नया पौधा मनी प्लांट का बना सकता है, और ये भी एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अब यहाँ पर आप लोगों को टिश्यू कल्चर मेथड के बारे में बताया गया है। ऑरेंज बॉक्स जो दिखाया गया आप लोगों को पेज नंबर 132 पर, इसमें आप लोगों को टिश्यू कल्चर जो मेथड होता है प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है वो कैसे करते हैं, हम प्रोसेस उसमें कैसे करते हैं वो बताया गया है। कि टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हैं, जो प्लांट आपका है उसकी ग्रोइंग टिप जो है, उसका जो बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा है वो ग्रोइंग होता है, तो आप उसे निकाल लेंगे, प्लांट में से निकाल लेंगे, या तो उसके कुछ सेल्स निकाल लेंगे या टिश्यू निकाल लेंगे। इसको ले करके आप उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर वो सारी चीजें होंगी जो प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए। और जब हम प्लांट के उस सेल्स को या फिर टिश्यूज को ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जहां पर उसको ग्रो करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी मिल रही हैं, तो ऐसे में वो सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, बड़ी तेजी से वो डिवाइड करते हैं, सेल डिविजन बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे सेल्स जल्दी जल्दी फॉर्म कर जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को एक नाम दिया गया है, कैलस कहते हैं। तो जब ये कैलस बन जाएगा तो इसको ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है सोल्यूशन में से, और फिर इसको एक अलग सोल्यूशन में डाला जाता है, ऐसे सोल्यूशन में जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हों, सारे के सारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन्स या फिर जिब्रेलिन्स। आपको ध्यान होगा ऑक्सिन्स क्या करने में हेल्प करता है, ऑक्सिन्स जो रूट्स हैं वो ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो जो भी कैलस है उसके अंदर रूट्स ग्रो करने लग जाएंगे अगर उसे हम ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जहां पर ऑक्सिन्स होंगे, साथ में अदर हार्मोन्स भी डालेंगे जैसे कि जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ताकि उसकी शूट भी ग्रो कर जाए, यानी कि जो जमीन के ऊपर वाला जो पत्तियों वाला पार्ट है वो भी ग्रो कर जाए। तो उससे क्या होगा कि वहां पर एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा, प्लांटलेट कहते हैं, छोटे से प्लांट को प्लांटलेट कहते हैं। तो प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें रूट्स होंगे और शूट्स होंगे, और ऐसे प्लांटलेट को आप सोल्यूशन में से निकाल करके जब जमीन में डाल देंगे, उगा देंगे, तो वो एक मच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर सिंपली उस प्लांटलेट को लेकर के आपको जमीन में बो देना है, जब आप उसे बो देंगे तो वो एक नया मच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पर हम क्योंकि टिश्यू का इस्तेमाल करके नया प्लांट का फॉर्मेशन करा रहे हैं तो इसे टिश्यू कल्चर मेथड कहते हैं। और यहाँ पर एक और खास बात है टिश्यू कल्चर मेथड की, कि यहाँ पर ऐसे पौधे जिनमें बीमारी लग चुकी है, जैसे फंगस लग गया है या फिर किसी और पेस्ट ने अटैक कर दिया है, तो उससे प्लांट के दूसरे पार्ट्स को नुकसान हो चुका होगा, लेकिन उसकी जो ग्रोइंग पार्ट है उसमें से हम टिश्यू निकाल रहे हैं और नया प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिजीज प्लांट में से एक नया बगैर डिजीज वाला प्लांट बना सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है ये एक बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावट वाले प्लांट्स हैं उनमें ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेड में जब हम लोगों ने ब्रेड को गीला करके ठंडी जगह पर, अंधेरी ठंडी जगह पर रख दिया था, तो उसमें जो फंगस लग गई थी उसको हम ब्रेड मोल्ड कह रहे थे। तो फंगस को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा था तो हमें बड़ा नेटवर्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। वो नेटवर्क क्या था? उस नेटवर्क का नाम होता है हाइफे। जो आप लोगों को नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखा था जो आपने ब्रेड मोल्ड को माइक्रोस्कोप में देखा था उसको हाइफे कहते हैं। उस हाइफे के ऊपर, उस नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे बल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, गोल गोल आप लोगों को बॉल सी स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, बहुत छोटी छोटी। वो क्या होती है? वो स्पोर्स होती हैं। और कहीं कहीं पर से आप लोगों को पूरा गोल दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे वो फूटा हुआ होगा और उसमें से दाने निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो जो दाने आपको छोटे छोटे निकलते हुए दिख रहे हैं वो क्या है? वो स्पोर्स हैं। और जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है बल्ब जैसा, उस नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर में गोल गोल कहीं कहीं पर आप लोगों को जो दिख रहा है वो क्या है? वो स्पोरांजिया है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जब ये फूट जाता है तो इसमें से दानेदार स्पोर्स निकलती हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये मॉइस्ट सरफेस के, यानी कि गीले सरफेस के जैसे ही संपर्क में आएंगे तो ये एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो स्पोर्स स्पोरांजिया से निकल रहे हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं आप लोग इन्हें देख रहे हैं, ये जो स्पोरांजिया है ये क्या होता है? ये थिक वॉल्ड होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, ठोस होती है, और वो इसलिए होती है ताकि इसके अंदर जो स्पोर्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिल सके। तो स्पोरांजिया जो है वो बेसिकली थिक वॉल्ड होता है, और वो इसलिए थिक है ताकि जब भी इन्वायरमेंट खराब हो, आसपास का स्पोर्ट्स के लिए नुकसानदायक इन्वायरमेंट हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट से स्पोर्ट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पोरांजिया का जो वॉल होता है वो थिक होता है। और जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, अच्छा होता है स्पोर्ट्स के लिए, तो वैसे ही जो स्पोरांजिया है वो बर्स्ट कर जाते हैं, वो फूट जाते हैं और उसमें से स्पोर्ट्स बाहर निकल आते हैं। और जैसे ही वो मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो रीग्रो कर जाते हैं और वो एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन टॉपिक में आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपने जो ब्रेड मोल्ड देखा था उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा था वो क्या होता है? वो हाइफा होता है, हाइफे होते हैं। बहुत सारे अगर हाइफा होंगे तो उसे हाइफे कहते हैं, और अगर एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसे हाइफा कहते हैं, ठीक है। तो अगर हाइफा जो है इसके ऊपर आप लोगों को जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पोरांजिया कहते हैं। उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया हाइफा ग्रो करा सकते हैं। जैसे ही वो मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे ही गीले सरफेस के वो संपर्क में आएंगे, वैसे ही वो एक नया हाइफा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेड मोल्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस, और ये क्या है? ये एक तरीके का फंगस है। और यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप लोगों को दिया गया है पेज नंबर 132 पर, फिगर 8.6। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी डायग्राम्स आपको दिए होते हैं आपको डायग्राम सारे पता होने चाहिए, डायग्राम्स आने चाहिए, आपको एग्जाम्स में बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है पेज नंबर 133 पर इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? तो देखो, सबसे पहले तो अगर फिशन की बात की जाए तो फिशन का मतलब ये होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करे तो वो क्या होता है? वो फिशन होता है। अब जब एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है जिसमें एक पेरेंट सेल होता है और एक डॉटर सेल होता है, तो इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। और ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? अमीबा में देखने को मिलता है, या फिर लेशमानिया में, बैक्टीरियाज में कुछ देखने को मिलता है, प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो दो में डिवाइड कर जाता है, तो इसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है टू। अब मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल मल्टीपल सेल्स में, बहुत सारे सेल्स में टूट जाता है और वहां पर बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम के अंदर, जो मलेरिया कॉज करने वाला एक प्रोटोजोअन है उसमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? स्पोर्स के द्वारा अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसे क्या फायदा होता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? स्पोर्स के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसे क्या फायदा है? तो देखो, सबसे पहले तो जो स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हम आसानी से लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्स जहां जहां पर गिरेंगे वहां वहां पर वो सारे स्पोर्स क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा फायदा ये है कि स्पोर्स हल्के होते हैं, इसकी वजह से स्पोर्स को हवा जो है वो उड़ा करके दूसरी जगह ले जा करके भी ग्रो करा सकती है। इससे फायदा ये होगा कि एक ही जगह पर सारे के सारे जो स्पोर्स है वो ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक ही जगह पर सब इकट्ठा अगर ग्रो करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि कॉम्पिटिशन होने लगता है आपस में ही, जिसकी वजह से सारे के सारे जो सर्वाइव होने के चांसेस होते हैं, सारे के सारे जो ग्रो कर रहे हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो एक ही जगह पर सभी के सभी ग्रो कर जाएं। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ग्रो करेंगे, कुछ कुछ डिस्टेंस पर ग्रो करेंगे, तो उससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्पोर्ट्स हल्के होने के कारण उसको हवा जो है वो ट्रैवल करा करके दूसरी जगह पर भी ग्रो करा सकती है। तीसरा फायदा यह है कि स्पोर्ट्स जब बनते हैं तो उनको स्पोरांजिया के अंदर कवर करके रखा जाता है। स्पोरांजिया क्या है? स्पोरांजिया एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, एक मोटी वॉल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्ट्स को प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर एनवायरमेंट आसपास का खराब है स्पोर्ट्स के लिए, तो ऐसे में स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्ट्स रहते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होने पाता है। जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंट होता है, उनके फायदे का एनवायरमेंट होता है, वैसे ही वो स्पोर्ट्स जो है वो स्पोरांजिया को बर्स्ट करके फोड़ करके बाहर निकल आते हैं और जहां जहां पर उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलता है वहां पर वो ग्रो करने लगते हैं। तो ये फायदे हैं स्पोर फॉर्मेशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस, एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन से क्यों नहीं नया इंडिविजुअल ग्रो किया जाता? तो देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस, तो हमारे में हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन से बने हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन का फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स ही अलग हैं, उनके अलावा दूसरे ऑर्गन्स में कैपेसिटी नहीं है टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल्स, टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स। तो अगर मान लो हमारा हाथ जो है वो कट जाता है, तो हाथ से कटने से नया इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ का वो फंक्शन ही नहीं है, नया इंडिविजुअल ग्रो कराने का उसका फंक्शन ही नहीं है। हायर ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग सेल्स हैं उनको एक अलग फंक्शन दे दिया जाता है, उनकी ग्रुपिंग हो जाती है जिससे कि टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन कराने का जो फंक्शन है वो भी एक अलग ऑर्गन सिस्टम में है जो कि हमारी बॉडी के सेक्स ऑर्गन्स में होता है, उनके अंदर गेमीट का फॉर्मेशन होता है और ये जो गेमीट्स है ये बाद में जाकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं जब मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन करवाना पॉसिबल नहीं है, रीजनरेशन करवा करके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है कि कुछ प्लांट्स में आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करके नया प्लांट बनाते हैं, तो ऐसा आप क्यों करते हैं, क्या क्या फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? तो बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स जो हैं वो नया प्लांट ग्रो कराने की कैपेसिटी खो बैठते हैं, या फिर उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि बनाना, बनाना के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो कि सीडलेस है। सिमिलरली पाइनएप्पल भी सीडलेस है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कराया जा सकता है। तो प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जिनमें सीड्स जो है वो ग्रो करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उनसे हम नया प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा फायदा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये है कि सीड फॉर्मेशन करवा के फिर प्लांट को जमीन में सीड को बोना, फिर नए प्लांट का उसको वेट करना कि कब वो ग्रो करेगा, उसके बाद फाइनली वो ग्रो करेगा, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नए प्लांट का फॉर्मेशन करवाएं तो वो थोड़ा क्विक होता है एज कम्पेयर टू जब हम लोग सीड की मदद से नया प्लांट का ग्रो करवा रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड है वो क्विकली यूज कर सकते हैं हम, उससे क्विकली हम लोग जल्दी से, कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी से हम लोग नए प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल हम लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग टेक्निक्स में भी कर सकते हैं, और साथ में जो नया प्लांट बन रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, क्योंकि हमने वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसकी प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का इस्तेमाल करके करवाया है, तो इसलिए जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारे सेम होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन करवाने के पहले डीएनए की कॉपिंग करवाना क्यों जरूरी होता है। तो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डीएनए के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके एक नए ऑर्गेनिज्म किस तरीके का दिखना चाहिए, ये उसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि आपको जो नया ऑर्गेनिज्म बनाना है वो किस तरीके का दिखना चाहिए, उसके कितने हाथ होने चाहिए, कितने पैर होने चाहिए, कितनी आंख होनी चाहिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आप नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है, इसलिए डीएनए की पहले कॉपी बनवाना, उसके बाद सारा सेल अपरेटस का कॉपी बनवाना, फिर ही रिप्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आए तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।